ಓಮ ಜ್ಞಾನಾತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶೈಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಭೇ ನಮಃ. ಯೋಗ ವೈರಾಗ್ಯಯುಕ್ತಯ ಮಾಯಾ ವಿರಚಿತೆ ಲೋಕೇ ಚರತ್ನ್ಯಶ್ಯಃ ಕಳೇವರಂ. ಸಹಿ ಸಹಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ಯುಕ್ತ ತಥಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಪುಷ್ಟ ಹೋಕರ್ ಏವಂ ಭೌತಿಕ ಪಹಚಾನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಿರಾಶವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸೇ ಸಮನ್ವಿತ ಹೋಕರ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ತರ್ಕ ದ್ವಾರಾ ಆಪ್ನಾ ಶರೀರ ಇಸ್ ಮಾಯಾಮಯ ಸಂಸಾರ ಕೋ ಗಿರ್ವಿ ಕರ್ ದೇನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ಇಸ್ ತರಹ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಸೇ ಆಪ್ನಾ ಸಂಬಂಧ ಛುಡಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. तो पिछले इस अध्याय के पिछले श्लोकों में से आप श्रवण करके आए किस प्रकार जीव मां की गर्भों में भी कष्ट भोगता है और गर्भ से निकलने के बाद भी इस संसार में भी दुख को दुख के पास दुख ही इसको अनुभव होता है. इस संसार का माया में संसार के यही ही जो स्थिति है कि लोग सोचते हैं कि संसार में आकर सुख लूटेंगे, लेकिन भगवान गीता में कहा कि अनित्यम असुखं लोकम, ये संसार अनित्य है और ये असुख लोक है, यहां सुख नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? दुख. जितने भी प्रयास करो सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन व्यक्ति क्या मिलेगा? दुख है. अनित्यम असुखं लोकम, ये अनित्य है और असुख लोक है, सुख नहीं मिलता है, यहां कभी सुख मिलने वाला नहीं है. जिन्होंने इस संसार को रचना की है, रचना करने के बाद उसमें एक साइन बोर्ड भी लगा दिया है. क्या साइन बोर्ड लगाया है? दुखालयम अश्वासतम, आलय का अर्थात घर, ये दुख के घर है और ये शाश्वत नहीं है. भूत्वा भूत्वा प्रलियते, बार बार इसकी प्रलय भी हो जाता है. ब्रह्मा जी की जो रात आता तब भी प्रलय हो जाता है. ब्रह्मा जी दिन में जब तक जगकी रहते तब तक सृष्टि है, और जो जो सो जाते ब्रह्मा जी फिर पूरा जीव जगत संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाता. ये मनुष्य शरीरधारी 84 लाख जोनी में जितने भी जीव है सबके शरीर छूट जाता है, हैं? और फिर ब्रह्मा जी की परमायु खत्म हो जाता तो फिर संपूर्ण प्रलय हो जाता. और थोड़े समय के लिए हम इस संसार में जब रहते हैं तब भी हम दुख कोई प्राप्ति करना नहीं चाहता, लेकिन दुख हमेशा उसको भोगना पड़ता है. संसार की यही नियम है वा यही नीति है कि ये जेल ही है, हम सब कैदी है जो बद्ध जीव है. भगवान की प्रकृति के नियम को उल्लंघन करने के कारण इसी जन्म मृत्यु संसार रूपी ये जेल में बार बार भटकते रहता है. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस चक्र में भ्रमण करते रहता है. इसलिए सम्यक दर्शन या बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सही सही दृष्टि से इसको देखने के लिए प्रयास करें. किस देखेगा? चर्म चक्षु में से नहीं. कौन सा चक्षु में देखेगा? ज्ञान चक्षु से. सदगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान अतिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शैलाकया, हम तो अंधकार के अज्ञान के अंधकार में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन सदगुरु के द्वारा हमें ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम संसार की स्थिति को सही सही देख सकते हैं. योग वैराग्य युक्तया, योग का अर्थ प्रभुपद कहते भक्ति योग. योग का अर्थ कोई दूसरे अर्थ नहीं कि हट योग और वा कोई प्रतान कोई ध्यान योग या ज्ञान योग अन्य अन्य योग के बारे में नहीं कहा जाता. योग शब्द का अर्थ ही यहां पर भगवान कपिलदेव कहते कि कौन सा योग? भक्ति योग. भक्ति योग के आश्रय करके ही सही सही ढंग से वा सही बुद्धि के माध्यम से तर्क से ही इस संसार की स्थिति को समझना चाहिए. यदि कोई ये संसार से जन्म होते संसार से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम को प्रवेश करना चाहता है तो इसको सही सही ढंग से भक्ति योग को आश्रय करके ही संसार के प्रति वैराग्य को उत्पन्न करके तर्क द्वारा समझना चाहिए संसार है क्या. संसार हम सोचते कि भोगने का वस्तु है, लेकिन ये भोगने का वस्तु नहीं है. ये माया विरचित है, इसको कौन रचना किया? भगवान की बहिरंगा शक्ति ने रचना करके रखा है, जिन्होंने सृष्टि का सृष्टि स्थिति प्रलय साधन की अधिकारिणी दुर्गा देवी भगवान ने इसको शक्ति दिए हैं. सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बद्ध जीवों को फिर सुधार कर अपने पास में ले जाने के लिए विशेष रूप में भगवान माया के द्वारा रचना करके संसार को रखे हैं जेल के अंदर, और उसी जेल के अंदर फिर भगवान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं एक कैदियों को उचित ज्ञान देने के लिए, कैसे अपने प्रकृत स्थिति को समझ कर कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, स्थिति को समझ कर फिर वो भोगने का इच्छा को परित्याग करके भगवान के चरणों की सेवा में तल्लीन रहे, इसको सिखाने के लिए भगवान ने अपना आचार्यों को भी भेजते हैं, अपने भक्तों को भी भेजते हैं। और इसलिए व्यक्ति को इस माया विरचित लोक इसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। माया विरचित लोक के चरण नश्य कलेवर में सर माया जानते हुए कि सर ये संसार माया के द्वारा रचना की गई है, और स्थिति को जानते हुए ठीक ठीक से इस संसार में जो चलना फिरना चाहिए, लेकिन साथ साथ जानना चाहिए कि शरीर नश्वर है, इसलिए संसार के प्रति आसक्ति से रहित होने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे बली महाराज जो कि द्वादश महाजन में से एक महाजन है, बहुत सुंदर श्लोक मैंने अपने मत को व्यक्त करते हैं, किम आत्मनानेन जहाति यो अंततः किम रिक्त हरई स्वजनाख्य दस्युभि किम जायया संस्कृति हेतुभूतया मर्त्यस्य गेहै किं इहायुषः व्ययः। क्या कहे किम आत्मनान, ये आत्मा से भिन्न है कौन सा शरीर, बद्ध अवस्था में आत्मा और शरीर में भेद हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकृत में शरीर आत्मा से भिन्न है। आत्मना अनेन, तो जो शरीर आत्मा से भिन्न है ये आत्मा के साथ इसकी सामंजस्यता पर आत्मा शरीर दोनों में अंतर है, और बद्ध अवस्था में सोचते कि शरीर ही आत्मा और शरीर के अंतर को नहीं देख पाते हैं, और कितनी भी प्रयास करता है कि हम चाहते कि शरीर को नहीं त्यागे, कोई शरीर को त्यागना नहीं चाहता है, त्यागना चाहता कोई शरीर को, कोई भी चाहता है ये त्यागना चाहता है, अभी नया नया शादी किया और अब बोलता है शरीर त्यागना चाहता है, विरक्त आ गया बस इतने जल्दी। चलो अभी पिता भी बना रहे हैं, पिताजी भी नहीं बना, अभी से त्यागना चाहता है। तो शरीर को ये शरीर और आत्मा में अंतर है, प्रकृति में शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर एक ही वस्तु नहीं है, अभी इसको अनुभव हो गया माखन चोर प्रभु को। तो आत्मा ना अनेन, जो कि शरीर जो आत्मा से भिन्न है, और जहाती जो अंतर तो ये त्याग देता है, प्रकृति में कौन किसको त्यागता है, आत्मा शरीर को त्यागता है कि शरीर आत्मा को त्याग देता है, आत्मा शरीर को त्याग देता है ना, शरीर आत्मा को त्याग देता है। तो बोली महाराज कहते कि शरीर आत्मा को त्याग देता है, शरीर को नहीं त्यागना चाहता है आत्मा, आत्मा तो बहुत प्रयास करता, कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता कि मरना नहीं चाहता है, कितनी प्रकार की मेडिसिन खाता रहता है ये शरीर को रक्षा करने के लिए, हमेशा ऐसे जवान बनाकर रखने के लिए कितनी प्रयास करता है ना, संसार के प्रति विरक्त आ गया, लेकिन यहां खिचड़ी खाने के लिए ठीक नहीं है, कहीं अच्छा सा प्रसाद थोड़ा मिलना चाहिए रेस्टोरेंट में ना। वैराग्य आ गया तो प्रकृति में हम ये शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं, शरीर किसी भी अवस्था में वृद्ध भी हो जाता है, फिर भी इसको हम कैसे भी कुछ टॉनिक खाकर कुछ ये खाकर मेडिसिन खाकर फिर भी कैसे भी इसको जवान बना के रखना चाहता है, कोई भी व्यक्ति बुढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन वस्तुतः तो शरीर एक दिन छूट जाता है। तो इसलिए बड़ी महाराज कहते कि जो ये आत्मा से भिन्न है, जो शरीर है जहाती जो अंत समय में ये छोड़ अंतत है, इसके जो परिणाम है ये शरीर छोड़ देता है किसको, आत्मा को। जीवात्मा कितनी प्रयास करता है शरीर को रखने के लिए, बहुत प्रकार के अच्छा अच्छा खाना खाता है, कितने सुंदर खाना खाता है, मेडिसिन खाता है, बहुत कुछ इसको प्रयत्न करता है, कितनी उपाय से शरीर को हमेशा जवान बना के रखने के लिए, लेकिन अंततः शरीर उसको छोड़ ही देता है, कितने प्रयास करने पर भी और डॉक्टर साहब को भी बोलता है कि डॉक्टर साहब और चाहे और कुछ पैसा ले लो, कितने भी चाहिए, करोड़ों रुपया ले लो, मेरे शरीर को और छोड़ा रख दो, और दो चार साल पांच साल के लिए मेरे कई प्लान है, हैं। लेकिन शरीर नहीं सुनता है सब बात, शरीर छोड़ ही देता है, हमसे तो आत्मा छोड़ देता है। आत्मा छोड़ना बहुत मुश्किल है, आत्मा नहीं छोड़ता इतना आसान से, शरीर में शरीर को छोड़ने के लिए नहीं चाहता, लेकिन शरीर छोड़ देता है किसको, आत्मा को। तो ऐसा शरीर के शरीर का क्या लाभ है जो शरीर अंत में छोड़ ही देता हमको, इस शरीर के प्रति आसक्ति रखना क्या आवश्यकता से, जो शरीर अंत में हमें छोड़ देता है, हम इसकी इतनी सेवा करते रहते शरीर का, हैं, कितनी प्रकार के शरीर, शरीर को हृष्ट पृष्ट बनाने के लिए इसको बढ़ाए, जवान अवस्था फिर रखने के लिए कितनी प्रयास करते हैं, लेकिन शरीर सुनता नहीं, कितनी मेडिसिन देने भी अंत में ये छोड़ ही देता है, हमें छोड़कर छोड़ देता शरीर जो देखता कि। तो आत्मा नहीं छोड़ने चाहने पर भी शरीर इस अंत में छोड़ देता, शरीर इसे और आत्मा के रहने के लायक नहीं रहता है इस शरीर में। किम रिक्त हारई स्वजनाख्य दस्यु भी, ये जो स्वजन बंधु है संसार में जितने हम सब रिलेशन बना के रखे हैं, ये कौन है, ये सब दस्यु है, यही लुटरे हैं, लूटते हैं, लेकिन हम सोचते कि हमारा ये हमारा बंधु है, हमारा परिवार के सदस्य है, इसलिए मेरे भाई बंधु कुटुंबी कई प्रकार के दोस्त सब बना के रखे, तो सोचते कि हमारा मित्र है। स्वजनाख्य दस्यु भी, बड़े महाराज कहते हैं ये स्वजन सब दस्यु है, यही डकायत, यही से आप सोचते कि लोटरे और कोई है, ये कोई लोटरे नहीं है, यही से लूटते हैं। तुम इतने जो कठिन परिश्रम करके धन कमाते हो, और इस धन प्रकृत में भगवान के जिसके मालिक लक्ष्मीपति भगवान की सेवा में लगने के लिए है, लेकिन यही सब लूट लेते हैं तुमसे, भगवान की सेवा में नहीं लग पाता है, किसी लिए नहीं लगा पाता है, क्योंकि स्वजनाख्य दस्यु जो बैठे यही सब लूट लेते हैं इसको, है? गृहस्थ कितनी परिश्रम करके धन कमाता है और किसी को धन देना चाहता है, दो चीज कोई नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई देना नहीं चाहता, है? किसी कोई चीज मांगने जाओ इतनी आसान से नहीं, यदि वो कुछ भक्ति करके थोड़ा आगे चेतना को वृद्धि मैंने सही मार्ग पर नहीं लिया तो उसको मांगने से कोई नहीं देगा, मांगने पर भी मना करेगा, है? लेकिन इसलिए अनुभव है, आप जैसे कोई मंदिर में कोई फेस्टिवल आता है, फंक्शन आता है, कोई जन्माष्टमी आता है, राधाष्टमी, बा कोई रामनवमी आदि किसी भी उत्सव में जाओगे किसको दान मांगने के लिए, बा मंदिर में आते हैं उनको दान मांगो, इतने आसान से पैसा निकालना है, निकालना संभव नहीं है, है? वो सोचते हैं मैं इतनी कठिन परिश्रम करके पैसा इनकम करता हूं, ये बाबा लोग बस बैठे बैठे लाओ, ये थोड़ी होता है, है? लेकिन वही व्यक्ति जिनको वो बंधु अपना सोचता, असली बंधु तो भगवान ही है, सभी प्रत्येक जीव मात्र के सबके बंधु कौन है, भगवान कहते सुहृद सर्वभूतानां ज्ञानतमं शान्तिरुच्यते, मैं ही प्रकृत में मित्र हूं, सुहृद हूं प्रत्येक जीवात्मा के, लेकिन इसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं, वो अपने सुहृद समझता कि अब घर में जो अपने पत्नी है, बच्चे हैं, असंबंधियां हैं, जो किसी रिलेटिव से है, ये सो मेरे असली मित्र है, लेकिन प्रकृत में वही तो सो लूटते हैं इसको, आप इसको मांगो पैसा नहीं देगा, लेकिन वो जिस दिन धर कोई नौकरी करता है तो पेमेंट महीने के लास्ट में इसको मिलता है, बा कोई बिजनेस कर किसी भी, इसको पत्नी को पता चलता कि इस पार्टिकुलर डेट में हमारा पत्नी नहीं सॉरी हमारा पति क्या लाता है, पैसा लेके आएगा जॉब में, बड़े हसमुख में वो दर्जे पर आ जाती है, और क्योंकि जानते कि आज माल आने वाला है घर में, तो आकर बड़े हंसते हुए स्वागत करती है, और वो मांगे न मांगे लेकिन वो अपने जब उसके जब में हाथ डालकर ही पैसा निकाल लेती है, तो इसको बड़ा आनंद आता है, किसको, पैसा कमाने वाला को बोलता देखो ये मुझे कितनी प्यार करती है, मुझे इसको देना भी नहीं पड़ता है, वो अपने आप निकाल लेती है जब में, पर तो मुख में बड़ा मुस्कान आ जाती है, उसके बाद पत्नी बा बच्चे कोई भी निकाल ले पैसा जब से, तो बड़ा हंसी आता है उसको बड़ा, लेकिन यहां पर प्रकृत में लक्ष्मी भगवान की लक्ष्मीपति की सेवा में उसके लिए देने के लिए नहीं चाहता है, तो इसलिए कहते पौली महाराज कहते कि तू इस प्रकार आसक्ति से क्या लाभ है, अंत में तो ये जो कुछ ये जो परिवार के जो सदस्य है जिनको मैं स्वजान बांधव बनाकर रखा हूं यही प्रकृति में लूटते हैं, सब कुछ मैं परिश्रम इन्हीं के लिए इतनी कठोर परिश्रम करता हूं, और सारे परिश्रम जो कि भगवान की सेवा के लिए लगना चाहिए, जो धन यही लोग लुट लेते हैं। तो इसलिए ऐसे आसक्ति के में आसक्ति से क्या लाभ है? किम जायया संस्कृति हेतु भूतया, जाया शब्द का अर्थ प्रभुपद कहते कि जया का अर्थ दूसरा अर्थ स्त्री, स्त्री का अर्थ ही जो विस्तार करने वाली है, संसार इसी से विस्तार होती है, किसे? स्त्री। अकेले है तो बैचलर है तो बस कोई चिंता नहीं है, अभी माखन चोर प्रभु को अनुभव हो रहा है इसलिए बोल रहे कि अभी से वैराग्य आ गया है, कहीं घूमो फिरो बस मस्ती में है, कोई चिंता नहीं। और लेकिन जही जाया बा स्त्री आ गया तो फिर चाहिए, क्या चाहिए? गृह क्षेत्र सूत वितप्त ये सब चाहिए, ये सब आस्ते आस्ते चाहिए। पत्नी आ गया तो अरे घूम नहीं सकता, इधर ब्रह्मचर्य आश्रम में रह नहीं सकता, रूम में बस हो गया, कोई कोई चिंता नहीं है, अपने आश्रम में कमरे में रहा, टाइम पर सुबह मंगल आरती वगैरह बस प्रोग्राम अटेंड किया, 9 बजे अपने प्रसाद रेडी है, बैठा खा लिया बस है, कोई चिंता नहीं, कोई उसको केवल एक ही मात्र की शास्त्र पढ़ना और प्रचार करना, यदि सही ब्रह्मचारी है तो समय को ठीक ठीक से उपयोग करेगा। और जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया फिर पत्नी आ गया वो तो फिर अकेले नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? घर चाहिए है? घर तो घर बनाए, घर के लिए धन ही चाहिए ना, बहुत परिश्रम करके धन कमाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, अजा मिल तो बहुत अच्छा बहुत सुंदर जीवन बिताता था, लेकिन जब वेश्या संगी बन गया तो फिर उसको बहुत परिश्रम करना पड़ा है, लूटना पड़ा धन, दस्यु रत्नाकर भी ऐसे लूटता था धन, लोग से धन ऐसे आसान से नहीं आता है। और एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए धन तो मधु से भी अधिक मधुर होता है, है ना? धन जो होता है मधु से भी अधिक मधुर है। मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन, सूर्य से भी अधिक उजाला उसको दिखाई पड़ता है धन। धन कमाएगा, धन नहीं होगा तो परिवार कैसे चलाएगा है? धन नहीं होगा तो कोई नहीं रहेगा, कोई रहेगा? आपने पत्नी छोड़ दी है? प्रभुपाद जी के जैसे महाभागवत वैष्णव की पत्नी भी क्या कहे, उनके भागवत को दे दी, कहा भेज दी दुकान में देकर, चाय के दुकान में देकर शक्कर और चाय पत्ती ले आई बस, और दूसरे के पत्नी के बारे में क्या कहा जाएगा? जब तक धन है पास में सभी पीछे साथ में है, धन नहीं है तो कोई भी साथ में नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी ने कहे कि माया का जो नेकेड जो कि पूरा क्या उसकी उलग्न रूप पूरा मुझे दिखाया भगवान ने, माया संसार में क्या होता है। प्रभुपाद जी ने भी आसान से छोड़ना नहीं चाहते, कहते मेरे परिवार है, पत्नी है, बच्चे है, और उनके गुरु जी ने दो बार स्वप्न में आ गए, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ रहे थे, देख रहे थे प्रभुपाद जी वही वैकुंठ जगत से आध्यात्मिक जगत से उतारते हुए, कहते थे कि अब है संन्यास लो, समय हो गया है, प्रचार में निकलो। प्रभुपाद जी सोचते थे कि अरे क्या कैसे निकलो, ये संसार है, छोटे छोटे बच्चे कितनी उम्र है, ड्यूटी है, ये तो बड़ा चमक जाते थे प्रभुपाद, असंभव है मेरे लिए अभी संन्यास लेना। लेकिन जो फिर भगवान ने विशेष कृपा करके उनसे सब छीन लिए, जदहंग अनुग्रहणामी हरिष्य तद्धनंग सनाई, सब कुछ उससे एक एक करके सब छीन लिया। प्रभुपाद ने निस्व हो गए, ऐसे बात वो घर को नहीं छोड़ा था, घर इनको छोड़ दिया इनको घर है, सब छोड़ दिया बस। पत्नी को पूछे कि यू लाइक मी और यू लाइक टी, वो क्या बोले? आई लाइक टी बस। प्रभुपाद समझ गए तो ये तो मुझे लाइक नहीं करे, मैं कितना दिन पड़े रहूं बेकार में, सभी सोचे बेकार का आदमी है, कुछ एक मैं पैसा कमाने का है नहीं, मत क्या करेगा ये संसार में, ये घर में रह क्या फायदा है? तो इसलिए तो जाया बा स्त्री इससे विस्तार होता है संसार, उसे जाया आएगा तभी पुत्र बा कन्या ये जन्म होंगे उनके माध्यम से, संसार को विस्तार करने के वही हेतु है वा माध्यम बनती है। तो फिर बोली मैं किम जाया या असंस्कृति हेतु भूतया, ये केवल शरीर के प्रति आसक्ति को बढ़ाने वाली है, कौन? पत्नी। इसके माध्यम से संसार के डिमांड जो भौतिक डिमांड जो आस्ते आस्ते बढ़ते जाते हैं, है? सारा दिन भर इतनी कठोर परिश्रम करना इसलिए पड़ता है, नहीं तो फिर चंद्र ने प्रारंभ से जो चंद्रमुखी था तो फिर वो क्या हो जाएगा अंत में? ज्वालामुखी बन जाएगी, है? चंद्रमुखी फिर सूर्यमुखी फिर अंत में ज्वालामुखी, जब पैसा नहीं है धन नहीं है तो फिर ज्वालामुखी बन जाएगी, उसको पैसा चाहिए, स्त्रियों के आकर्षण रहता है विशेष रूप में अलंकार से और अच्छे वस्त्र पहनने से, साड़ी अलंकार ये सब उनको चाहिए, और उनके जो आवश्यकता वस्तु को यदि वे पति नहीं जोगा पाएगा तो वो निश्चित रूप में वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब जो सभी प्रकार सभी स्त्री ऐसा ही नहीं होते, शास्त्र में से कहा कि प्रकृति में लगभग 20 वेराइटी के अलग कैटेगरी की सब स्त्रियां हैं। सबसे उच्च जो कोटि के स्त्रियां होते हैं पद्मिनी श्रेणी के स्त्रियां, जो कि आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जगत में विचरण करते हैं, पद्मिनी संकीर्णी गदिनी चक्रिणी हस्तिनी कई प्रकार के स्त्रियां, और सबसे लास्ट में पुंस्थली स्त्री है, वैसे आवृत्ति करने वाली स्त्रियां होते हैं। लेकिन सभी स्त्री ऐसे नहीं होते, लेकिन यहां पर विशेष रूप में जो भौतिक जगत के बारे में व्याख्या की जा रही है तो इसलिए एक जनरल स्त्रियों की भूमिका ली जा रही है, जो समाज में विशेष रूप में प्रचलित स्त्री मेजोरिटी जिनकी संख्या होता है। तो ऐसे ही स्त्री में भी क्या माने स्त्री के प्रति आसक्ति में क्या लाभ है, स्त्री के कारण ही संसार की वृद्धि व माया के जो संसार के प्रति आसक्ति वृद्धि होते जाता है, इसलिए स्त्री में भी क्या काम है। बड़ी महाराज कहते कि ये शरीर में भी कोई लाभ नहीं है, शरीर के प्रति आसक्ति रखना भी कोई लाभ नहीं, बस स्वजन बंधु स्वजनाख्य बंधु ये जो मैं समझ रहा हूं ये दस्यु के समय लौट रहे थे इसकी प्रति भी आसक्ति रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, अपने स्त्री के प्रति भी आसक्ति रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही सारे भौतिक आसक्ति आस्ते आस्ते आगे बढ़ते जा रहा है, यही माध्यम है संसार को वृद्धि करने में। और मर्त्यस्य गेहि किम या इहायुष्य, इसलिए यह आयुष्य को ऐसा ही समय को ऐसे वृथा गंवा देना नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति में धन कमाने में पत्नी में आसक्ति बच्चों में आसक्ति स्वजन बंधु से आसक्ति शरीर में आसक्ति ऐसे करके समय को नहीं बिताना चाहिए। समय जो मिला किसके लिए में किस लिए इसको व्यतीत करना चाहिए, भगवान की भजन में है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहे कहे कि तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु वय परम न तथा बिंदते खेमंग मुकुंद चरणाम्बुजम। उनकी ये बड़ी महाराज एक महाजन उनकी प्रहलाद महाराज इनके क्या रिलेशन होता है उनके साथ, इनके इनके ग्रैंडफादर नाना, तो वो कहते कि प्रहलाद महाराज फिर कहे दो महाराज को माने दो महाजन कम से कम असुर कुल में हुए हैं, लेकिन फिर भी महाभागवत वैष्णव होने के नाते ये महाजन है। दैत्यानंग प्रहलाद चश्मी, भगवान कहे कि प्रहलाद मेरा ही विभूति है। और उन्होंने कहते कि तत्प्रयास न करते, ऐसे प्रयास मत करो, जैसे बड़ी महाराज कहते कि ऐसे ही आसक्ति रखना ठीक नहीं है, प्रहलाद महाराज कहते कि ऐसे ही आसक्ति नहीं मत रखो है, ये संसार के प्रति आसक्ति घर में परिवार में संबंधियों में से पत्नी में ये शरीर में ये आसक्ति को छोड़ो, इस प्रकार आसक्ति रखकर समय को वृथा व्यय मत करो। तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु वय परम, ये जो आयु बढ़े मूल्यवान समय है मनुष्य जीवन का जो अवधि है, दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम, यदि अन्य जोनि में शरीर प्राप्त होता और इस शरीर का भी विनाश होता, इस प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये भी विनाशशील है, मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा, लेकिन फिर भी इस शरीर का कुछ विशेष अर्थ है, अध्रुवम अर्थदम विशेष अर्थ है शरीर का, कुछ शरीर जो प्राप्त हुआ है इसको ठीक ठीक से उपयोग करना चाहिए, किससे भक्ति से, इसलिए कहते तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु वय परम न तथा बिंदते खेमंग मुकुंद चरणाम्बुज, भगवान मुकुंद की चरण को आश्रय करो है, उन्हीं का आश्रय करके उन्हीं की भक्ति करना यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। और यदि ऐसा ही कार्य नहीं किया तो फिर जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण नाभजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान बुझ कर जहर मत खाओ, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। मनुष्य जन्म इस प्रकार आहार निद्रा भय मैथुन और विषय भोग के लिए नहीं है, ये शरीर कुछ विशेष अर्थ के लिए प्राप्त होता है कि इसी शरीर में ही हम भगवान की चरण में शुद्ध भक्ति करके ही भगवत धाम को वापस जा सकते हैं, लौट सकते हैं, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। चाहे कोई किसी वर्ण आश्रम में क्यों न हो, वा किसी भी जोनि में क्यों न हो, पुरुष हो स्त्री हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। भगवान कहते कि स्त्रीय वैश्या तथा शूद्र तेपी जानती पराम गति, स्त्री अपि सुपाप जन, जो कि कितने भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन यदि मेरी भक्ति को आश्रय करता है, अहित की भक्ति करता है, तो निश्चित रूप में मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति योग को ही आश्रय करके ही हमें इस जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होना, मुक्त होने के लिए प्रयास करना, यही प्रकृति में हमारा कर्तव्य है। दुथा समय को इंद्रिय तृप्ति में व संसार के प्रति आसक्ति में रखकर गवाना नहीं चाहिए, और समझना चाहिए कि किस लिए हमें संसार में, संसार क्या है, इसको कैसे समझना चाहिए ना, सम्यक दर्शनिया, सम्यक दर्शनया, सही सही दृष्टि से इसको विचार करो। बुद्धिमान व्यक्ति इसको विचार करके देखता है, जो कुछ करता है करने पहले सोचना चाहिए, सम्यक दर्शनया बुद्धिया, तर्क से, बुद्धि का तर्क से आध्यात्मिक शास्त्रों को अध्ययन करके ही, तर्क वितर्क के माध्यम से सही दृष्टि से देखना चाहिए संसार को, स्थिति को, और देखते हुए जोग वैराग्य युक्तया, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा ना, कहते कि जोगों के माध्यम से, जोग का अर्थ ही प्रभुपाद कहते भक्ति योग, जैसे कहते कि द्वितीय ने पहला स्कंद की भागवत के दूसरे अध्याय में जो सिद्धांत है उसी के आधार पर हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्य ज्ञानम चयत अहेतुकम। भगवान वासुदेव के चरण में भक्ति करना चाहिए, भक्ति में संलग्न हो जाने से ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम आदि नवधा भक्ति को आश्रय करके, जब हम भक्ति योग को आश्रय करेंगे तभी ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, इनको स्वतंत्र रूप में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं ज्ञान वैराग्य के लिए। लेकिन हम पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग को जब अनुसरण करते हैं तभी आस्ते आस्ते ये दोनों भी बछड़े हैं, माँ भक्ति माँ की दो बछड़े हैं, गाय को गाय रूप में यदि भक्ति को कहा गया शास्त्र में, पद्म पुराण में ऐसे ही वर्णन आता कि तो माता भक्ति को गाय के समान यदि हम स्वीकार करते तो उसके दो बछड़े होते, कौन से, ज्ञान और वैराग्य। अकेले भक्ति शोभा नहीं पाता है, बछड़े रहता तो उसको अच्छा शोभा देता है ना, केवल भक्ति है तो आपको केवल गाय जा रहा तो इतने लोग अट्रैक्टेड नहीं होते, उसके साथ जो बछड़े चलते हैं तो बड़े सुंदर लगता है, दो बछड़े साथ में, तो ये दो बछड़े कौन है, ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य दोनों, लेकिन स्वतंत्र रूप में ज्ञान वैराग्य की प्रैक्टिस करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, हम यदि भक्ति को भक्ति करते रहेंगे, नव पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग को अनुसरण करके भक्ति योग को आश्रय करेंगे, ये दोनों उत्पन्न हो जाते, कौन सा, ज्ञान और वैराग्य, अपने आप संसार की स्थिति को हम समझ सकते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु धरा पर आविर्भाव हुए हैं, जैसे सर्वम भट्टाचार्य कहते कि किस लिए आए महाप्रभु संसार में अवतीर्ण हुए, वो वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकं पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिजे तमहं प्रपद्ये। विशेष कृपा करने के लिए महाप्रभु इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं, और विशेष रूप में वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए, स्वयं भगवान है लेकिन उन्होंने वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए ही भक्ति को आश्रय किए, शुद्ध भक्ति को स्वीकार करने के, स्वीकार करके ही, स्वयं आचरण करके ही हमें सिखाए, और इसको शिक्षा दी है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, जो शिक्षार्थम एकं पुरुष, पूर्व जो पुराण पुरुष वही श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य के रूप में अवतीर्ण होकर हमें सिखाए। यदि भक्ति करता है निश्चित रूप में उसको वैराग्य उत्पन्न होगा, यदि वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा संसार के प्रति, वो भक्ति नहीं कर रहा है। भक्ति परेशान और भव विरक्ति अन्यत्र च, यदि भक्ति कर रहा है तो उसके पास में निश्चित रूप में दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, संसार के प्रति अनासक्ति, संसार के प्रति अनासक्ति निश्चित रूप में इसको दिखाई पड़ा, चाहे बाह्य रूप से कुछ अपने केवल ड्यूटी बजाने के लिए कुछ आचरण करते रहा, लेकिन अंतकरण में निश्चित रूप में वैराग्य को अनुभव करेगा, संसार के प्रति वैराग्य भावना आएगा। यदि संसार के प्रति वैराग्य अनुभव नहीं हो रहा है भोग की प्रति आसक्ति अधिक से अधिक बढ़ रहा है तो वो भक्ति नहीं कर रहा है, है? भक्ति जो करेगा निश्चित रूप में भक्त वैराग्य, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। और भगवान कहते कि मेरे भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता है, मेरे जो भक्त है तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अजमतम नाशयामी आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसी भक्त जो अनन्य चित्त होकर मेरी सेवा परायण होता है तो अंतकरण से मैं ही बैठा हूं, ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रज्वलित करके उसके समस्त अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त कभी अज्ञानी नहीं होते हैं, चाहे वह अंगूठा छपा वाला हो, गौर केशवदास बाबा जी महाराज की तरफ अंगूठा छपने वाले हैं, उनको कुछ पता थोड़े कोई शास्त्र संस्कृत ज्ञान ये सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो महाभागवत वैष्णव है, सब जानते हैं महाभागवत वैष्णव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान विद्वान शिष्य उनके थे, और प्रभुपाद जी कहते थे मेरे गुरु महाराज इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, किसी भी विभाग से किसी प्रकार की ज्ञान की चर्चा करें उनके साथ किया जा सकता है, बाकी किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। लेकिन उनकी गुरु महाराज तो थे आंगूठा छपाने वाले कौन, लेकिन स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि मैं कभी कभी विशेष स्थिति में आता हूं तो कुछ प्रश्न लेकर जाता हूं मेरे गुरुदेव के पास, लेकिन उन्होंने जो मेरे प्रश्न के समाधान करते हैं मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता हूं, जो उनकी मुख से उपनिषदों की भागवत की गीताओं की कई कई जो श्लोक को मैं भी श्रवण नहीं, ऐसे ही श्लोक उनकी मुखारविंद से निकलते जाता है, किनकी मुख से, तो कौन बुलाता है इनको है? भगवान स्वयं, वो तो हृदय में बैठे हैं। मत स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च, शुद्ध भक्तों को पूरा के यार वो लेते हैं, इसलिए शुद्ध भक्त कभी अज्ञानी नहीं रहता है। जो शुद्ध भक्ति करता है निश्चित रूप में उसको संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा, और जो आवश्यक उसकी ज्ञान जिस स्थिति पर भगवान उसको सप्लाई करते हैं है? दिव्य ज्ञान से अज्ञानी नहीं रहता संसार, वैसे संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता अपने आप भक्ति करने से ही, शुद्ध भक्ति के ही लक्षण है। तो इसलिए सबको जानना चाहिए कि माया विरोचित लोक है, ये जो लोक है जिस संसार में हम निवास करते हैं ये माया के द्वारा बनाया गया, शरीर भी नहीं, संसार भी माया से बनाया गया और ये शरीर भी वही पंचभूत में बना गया है। तो इसलिए माया विरचित लोक, ये माया के द्वारा रचना किया गया संसार के प्रति, संसार की स्थिति को जानते हुए चरित न्यस्य कलेवरम, जो ये शरीर में रहते हुए भी चलना फिरना चाहिए बड़े सतर्कता से, जानते हुए माया की स्थिति को ठीक से विचार करके बुद्धि के द्वारा सदगुरु के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके और बुद्धि के माध्यम से ठीक ठीक से विवेचना करके संसार को समझना चाहिए। जो संसार का स्थिति क्या है आपको समझ में आ गया फिर इसमें फंसना नहीं चाहिए। बुद्धिमान का काम है कि इस मनुष्य शरीर में होते हुए भक्ति को स्वीकार करें और भक्ति जो किए जो विधियों को अपनाए, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो विधि दिए हैं तो उसको आचार उसको उसी मार्ग पर चलते हुए उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत सतोहवृते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति, उत्साही बने रहे भक्ति में। जब हम भक्ति के मार्ग को स्वीकार किए हैं उत्साह के साथ पूर्ववर्ती आचार्यों को दिया गया मार्गदर्शन को आचरण करते रहे, उसको फॉलो करते रहे, निश्चय की भावना रखें कि यदि मैं प्रभुपाद जी के दिया गया मार्ग को अनुसरण करते रहूंगा निश्चित रूप में मुझे जीवन सिद्धि प्राप्त होगा, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करने में योग्य बन जाऊंगा। प्रभुपाद जी जब कहे कि निश्चित में जो इस कर्म में रहा है और उनके दिया गया मार्ग को अनुसरण करता है, नियमित रूप से सारे विधियों को पालन कर रहा है, जप कर रहा है, भागवत कक्षा में बैठ रहा है, सब कुछ पालन करता है, प्रभुपाद जी कहते मैं गारंटी देता हूं निश्चित रूप में भगवत धाम आएगा, भगवत धाम जाएगा। इसलिए धैर्य के साथ, निश्चय की भावना के साथ और धैर्य पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो कोई कोई बोलते हैं हो गया 15 साल हो गया मेरे तो कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा मेरे से है? फिर भी धैर्य रखना चाहिए है? कि धैर्य के साथ में जो मैं भक्ति क्रियाओं को पालन करते रहेंगे आचरण करते रहेंगे तो भी फिर अंत में हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन सकते हैं। प्रभुपाद जी के जो वचन है उसके प्रति श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ विश्वास है? भक्ति की कोई भी व्यक्ति का अधिकार केवल श्रद्धा के आधार पर पहचाना जाता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। कोई व्यक्ति का अधिकार को निर्णय केवल श्रद्धा के आधार पर निर्णय किया जाता है। कितने श्रद्धा शब्द, श्रद्धा श्रद्धा शब्द का अर्थ ही सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म के तह है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरे जीवन का समस्त कर्तव्य जो संपन्न हो जाएगा, इसमें पूर्ण विश्वास रहना, इसको कहते श्रद्धा। तो इस श्रद्धा के जो जिसका जितने सुदृढ़ विश्वास है तो उत्तम है, और श्रद्धा में थोड़ा डाउट भी रहता है, बीच में डाउट कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, फिर डाउट में आएगा तो और अधिकार फिर नीचे आ जाता है, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ अधिकारी तो बस सबसे में संशय में रहता है, क्या चल रहा है इसको, में है तो चला चलता हूं लेकिन क्या भगवद्धाम जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा क्या होगा, कभी डाउट आता है इधर से उधर से, इसको पूरा संग, क्योंकि वो शास्त्र ठीक से पढ़ता नहीं, कनिष्ठ वैष्णव का अर्थ शास्त्र नहीं पढ़ना, उसको शास्त्र में रुचि नहीं है, और बस अपना घंटी बजाया और आरती किया काम खत्म, फिर युक्ति तर्क करना ये करना झगड़ा करना, वैष्णव का आचरण सही नहीं मारे इनके सब आचरण सही नहीं करना, ये सब होता है क्योंकि शास्त्र विचार शास्त्र को नहीं पढ़ने के कारण, कनिष्ठ वैष्णव वैष्णव का ही लक्षण है, शास्त्र युक्ति जानता शास्त्र पढ़ता नहीं और केवल भगवान को देखता है विग्रह में, अर्च विग्रह में भगवान है सही बात है, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में भी प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे उसको नहीं देख पाता है, इसलिए अन्य को व्यवहार ठीक से नहीं करता है और उसको हर समय हमेशा संशय में रहता है क्या करना क्या नहीं करना, उसको पूरा डिसीजन नहीं ले पाता है। इस प्रकार संशयात्मा व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी भक्ति से गिर जाने का बहुत संभावना रहता है, कोई इसको भौतिक प्रलोभन देकर भक्ति से आसान से नीचे गिरा सकता है, इसलिए इसका श्रद्धा बड़ा कोमल है। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, इसकी श्रद्धा इसमें कि भक्ति कृष्ण भक्ति कैले पूर्ण ने सर्व कर्म कृत है, मेरे सारे कर्म सर्वे जितनी प्रकार की कर्तव्य सभी संपूर्ण सब निभा जाएगा केवल भगवान की भक्ति करने से, इसमें कनिष्ठ अधिकारी के पास में थोड़ा डाउट रहता है, सही बात है कि नहीं, कोई डाउट आ जाएगा। अभी मैं किसी प्रोग्राम में कहा वो मैं तो बहुत अच्छे घर के लोग हैं वक्त है सब, लेकिन उन्होंने बड़ा शंका में पड़े कि उनकी कोई रिलेटिव ने मृत्यु हो गई उनके पिताजी के पिताजी और ऐसे कुछ किसके, वो क्या करना चाहते थे कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर कुछ कहते कि उसका बहुत कुछ क्रिया करना चाहते थे घर में, बहुत मैंने उसमें लगभग कोई ब्राह्मण पंडित इनको करोड़ों रुपया का बिल और लिस्ट दे दिया था, ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारा जो ये पूर्वज है ये जो है ये पहुंच नहीं पाएगा कहां, वैकुंठ धाम नहीं जाएगा, ये जमराज के पास में वो कहां से देखा जाए इनको, बोला गरुड़ पुराण में बताया गया है, बोला आप पढ़िए महाराज पढ़िए देखिए गरुड़ पुराण में लिखा गया है कोई आदमी जो मर जाता है तो उसको जमदूत बांध के नहीं जाते हैं, चाहे वैकुंठ जाएगा वैकुंठ लोग जाएगा लेकिन पहले उसको जमराज के घर में जाना पड़ता फिर वहां से वैकुंठ जाना पड़ता है, पहले कहां जाना पड़ता जमराज के पास में पहले जाना पड़ता फिर वहां से वैकुंठ जाएगा, तो इसलिए हमें तो जमरा मैंने ये करना पड़ेगा क्रिया से कर्म करनी ब्राह्मण से बोला कि गए ऐसे, लेकिन वो कन्विंस है आप लोग भक्ति कर रहे हो भक्ति के मार्ग को अपना और कि ये सुकर्मकांड को स्वीकार कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था सुबुधिराय को, सुबुधिराय को कहा ना वो भी ऐसा ही प्रायश्चित करना चाहता दोबारा फिर हिंदू समाज में आने के लिए, और बनारस के ब्राह्मण से उसको बड़ा लिस्ट दे दिए थे, कोई कोई कहा था कि गर्म घी पीकर शरीर त्याग दो तो और प्रायश्चित नहीं, दूसरे कोई कहा था करोड़ रुपए का लिस्ट बनाकर दे दिया वैसा ये लिस्ट सब लाओ ऐसे बड़ा यज्ञ करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि दक्षिणा के लोग में उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ दे दिया, लेकिन महाप्रभु के पास में जो होते महाप्रभु कहे कि तुम बुद्धू हो ऐसे सब करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण नाम हईते हवे पातक मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण, एक कृष्ण नाम लेने से पाप से तुम मुक्त हो जाओगे, दूसरे और कृष्ण नाम ऐसे करते रहोगे तो भगवत धाम पहुंच जाओगे। कनिष्ठ अधिकार को इसमें विश्वास नहीं होता, भक्ति तो है कंठी कंठी तिलक भक्ति जब भी करता है लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट रहता है ये सच है ना क्या, जो निमी करभाजन ऋषि कह दिया कि देवर्षि भूतात्मा निनांग पितृणांग नकिंकरणाय अंग्रणी च राजन सर्वात्मना जो शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत कर तुम। भगवान मुकुंद की भक्ति करने से तुम किसी के ऋणी नहीं रहोगे, समस्त ऋण चुक जाएगा, पितरों की ऋण और जो कि देवताओं की ऋण, ऋषियों की ऋण, कितनी प्रकार की जो और उपकार करने वाले सब आप मित्रों के चरण में जो कुछ भी तुम्हारा उत्तरदायित्व है सभी निभाया जाएगा, केवल एकमात्र भगवान मुकुंद की आश्रय चरण आश्रय करने से। इसमें डाउट रहता है, इसमें डाउट रह जाता है, थोड़ा इधर उधर सुनता है करता है, भक्त संघ के अभाव और शास्त्र की अध्ययन के बिना ठीक से नहीं पढ़ने के कारण उसको डाउट रहता है। तो इसलिए कनिष्ठ कहते कि जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन। लेकिन यदि वही कम यदि कनिष्ठ वैष्णव भी आस्ते आस्ते उत्तम वैष्णव के संग करेगा, उनके सेवा करेगा, क्रमे क्रमे सही सही भक्त है वे उत्तम। कनिष्ठ प्रथम प्रथम में था ऐसे का मतलब नहीं कि जिंदगी लाइफ तक लाइफ शरीर त्यागने तक ही कनिष्ठ भी रहेगा, नहीं। यदि वो प्रयास करेगा उत्तम भक्तों की संगति करेगा क्रमे क्रमे सही भक्त है वे उत्तम। कोमल श्रद्धा होने के कारण उसको कहा गया कि ये कनिष्ठ जन, लेकिन क्रमे क्रमे सही भक्त है वे उत्तम, क्रमे क्रमे फिर आस्ते आस्ते उत्तम हो जाएगा, पढ़ेगा आस्ते आस्ते भक्ति में। पूर्ववर्ती आचार्यों के वचन में यदि उसको श्रद्धा है, उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ उसको पालन करते रहेगा, आस्ते आस्ते स्थिति बढ़ेगा, वो निश्चित रूप में फिर मध्यम और अंत में उत्तम स्थिति को भी वो आ सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ग्रीन मैंगो और क्या राइट मैंगो, पक्का हुआ हमने जो कच्चा आम और पक्का आम, अभी कच्चा है लेकिन उसे डैम्प में यदि लगाकर लग कर रहेगा किसी ना किसी कारण से वो झड़क वहां निकल नहीं जाएगा, तो फिर क्रमे 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 परिपक्व होकर फिर पक जाएगा है? तो इसी प्रकार कनिष्ठ प्रारंभ से हम सभी की स्थिति प्राय कनिष्ठ के स्तर पर रहता है, लेकिन आस्ते आस्ते भक्तों की संगति, शास्त्र के अध्ययन, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने से, भक्तों की संगति करने से, सेवा में आस्ते बढ़ते बढ़ते नियमित भागवत कक्षा को श्रवण करने से, प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ किताबों को पढ़ने से फिर हमें डाउट सब क्लियर होता है। आगे बढ़कर कनिष्ठ मध्यम भक्त के पास में शास्त्र युक्ति इतने नहीं रहता है, लेकिन फिर भी दृढ़ विश्वास रखता है गुरु के वचन में, साधु के साधु शास्त्र गुरु में इसको दृढ़ विश्वास रहता है। मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ निष्ठावान, शास्त्र युक्ति इतना नहीं जानता, कोई मायावादी कोई आ गया कोई विशेष आया तो युक्ति तर्क में फरस्त फेल मार सकता है, इसको डिपीट हो, लेकिन फिर भी डिपीट होने पर भी अपना जो सिद्धांत से वो अटल रहता है, नहीं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ये लाइन से वो विच्युत नहीं होता है, चाहे जानता कि मैं इसको डिफीट, लेकिन बोले कि मेरा गुरु जी के पास में ले जाने से वो इसको डिफीट कर देगा है। तो इसलिए मध्यम अधिकारी शास्त्र युक्ति न जानने पर भी अपने सिद्धांत से अड़िग रहता है, वो कभी उसे स्वीकार नहीं करता, जो कि मायावाद सिद्धांत वा अन्य किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन उत्तम अधिकारी तो शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ निष्ठाजार, उत्तम अधिकारी से ही तारा संसार, चमत्कार अधिकारी तो सब शास्त्र युक्ति में भी पारंगम होता है और दृढ़ निष्ठा है भगवान की भक्ति में, और उत्तम अधिकारी वो अकेले ही पूरा संसार को उद्धार कर सकता है। महाभागवत वैष्णव उत्तम अधिकारी वैष्णव अकेले ही भगवान सारे जगत को उद्धार कर सकता है, और एक उत्तम अधिकारी वैष्णव के कार्य को कई मध्यम अधिकारी मिलकर फिर उसको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं ने? लेकिन एक उत्तम अधिकारी वैष्णव पूरे ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सलाह देते कि तात्पर्य में हमें बुद्धि से युक्त होकर सद्गुरु के माध्यम से जो बुद्धि प्राप्त हुआ है उसी आध्यात्मिक बुद्धि की आश्रय का आध्यात्मिक ज्ञान तथा बुद्धि को आश्रय करके ही माया विरचित लोग संसार की स्थिति को जानना चाहिए, सम्यक विवेचना मैंने सही दृष्टि से विचार विवेचना करके समझ जाना चाहिए संसार का स्थिति क्या है, और इसको समझते हुए इस संसार में ऐसा ही चलना फिरना चाहिए, लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए किसमें, संसार में, संसार में आसक्ति मत रखो, ये सब नाशवान है, कुछ स्थिति किसी की परमानेंट नहीं है, यहां तक कि शरीर भी पर ये तो शरीर तो नाश होगा, यदि भी नाश हो जाएगा तो अभी हमको तो सोचे कि मैं पुरुष के शरीर में हूं तो मैं मैंने पुरुष ही हूं, तुम पुरुष में नहीं, यदि आसक्ति रखकर शरीर त्यागेगा तो स्त्री के प्रति फिर अगला शरीर तुम्हारा भी क्या मिला जाएगा, आपको स्त्री का शरीर और स्त्री को पुरुष का शरीर मिलेगा, यही से तो बदल जाएगा सब कुछ, फिर आस्ते आस्ते आगे बढ़कर जो आसक्ति और घर संसार परिवार जो कुछ भी ये सब झूठा है, इसलिए ये सब भौतिक उपाधि से मुक्त होना चाहिए। सब भक्ति का अर्थ है सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाओ और निर्मल चित्त से तत्परत्न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में अर्पण करो, इनके सेवा में लगे रहो काय मनो वाक्य में, और तभी हम जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करके जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। समय हो गया, कोई प्रश्न है किसको, किसी को कोई प्रश्न है? तो इसलिए मैं बताया कि भाई तीनों प्रकार के अधिकार है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। आप कौन किस स्तर पर भजन कर रहे हैं आप स्वयं विवेचना कर सकते हैं, ठीक ना। अभी तो इसलिए हमको कम से कम आना पड़ेगा भगवत धाम जाने के लिए, ऊपर स्तर के आना, कौन सा स्तर में है, उत्तम स्तर पर। लेकिन उत्तम स्तर पर कोई प्रयास करने है, लेकिन कोई यदि हम यदि भक्ति को आचरण करें, पूर्ववर्ती आचार्यों की कहना को मानकर चलेंगे, ठीक ठीक से आचरण करते रहेंगे, ग्रेजुअली हम उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं कहा कि ग्रीन मैंगो और राइपन मैंगो है, पक्का हुआ आम कच्चे आम, प्रारंभ से कच्चे आम हो, यही प्रकार की। लेकिन प्रयास करते रहना, छोड़ना नहीं चाहिए, वैष्णव संघ को नहीं छोड़ना चाहिए, भागना भाग जाना नहीं चाहिए इसकन से, ईश्वर रहो, नियमित प्रभुपाद जी की विधियों को पालन करते रहो, शास्त्रों को अध्ययन करो, आस्ते 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 बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे, नीचे नहीं गिरोगे, विश्वास के साथ जब चलोगे तो आस्ते आस्ते भक्ति में बढ़ोगे। ठीक है, रातारात कोई उत्तम वैष्णव बढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए भी ये मार्चिंग करके नहीं जा सकता भगवत धाम, जैसे मिलिट्री मार्चिंग करके नहीं, जब तक आपके मन से समस्त प्रकार के भौतिक इच्छाएं समाप्त तो नहीं हुआ है तो भगवत धाम प्रवेश करने का गारंटी, वहां प्रवेश करने के लिए अधिकार नहीं है। सबसे सब प्रकार की भौतिक इच्छा अन्य अभिलाषित शून्यम, समस्त अभिलाष से मुक्त, अन्य अन्य अभिलाष इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तथा तथा कथित साजुज्य मुक्ति की इच्छा से भी व्यक्ति को मुक्त होना पड़ेगा भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।